तो मैं इसी से शुरू करूंगा कि ये जो ओ माय क्रॉन ओ माय गॉड की तरह आया है, ये जो है क्या चीज और इससे कितना खतरा है। हालांकि इस पर खास इंफॉर्मेशन अभी तक किसी के पास नहीं है, तो इस पर बात बहुत ज्यादा करना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। लेकिन ये जो ट्रेंड है, इसमें आपके अनुभव में क्या लगता है आपको कि इस तरह के वेरियंट्स तो पहले भी आए हैं, कुछ खतरनाक भी रहे हैं। जनरली इन्फेक्शियस डिजीज पैंडेमिक जो होते हैं उसमें ट्रेंड क्या होता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हम 5 साल बाद भी इसी की बात करते रहेंगे क्या कोविड की, कि इसका धीरे धीरे एक नॉर्मलाइजेशन कहीं होगा। पहले ओमिक्रॉन के बारे में बताइए आपके।
हाँ, तो पहला तो जैसे ओमिक्रॉन एक वेरिएंट हो गया, ठीक है। तो अब वेरिएंट इसलिए है क्योंकि कोविड की अपना अपना एक कोविड का एक आरएनए था, उसमें कुछ कुछ उसका एक स्ट्रक्चर था। जब किसी चीज का अपना आरएनए चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो अब अगर आप उसमें वो आरएनए जो है उससे प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन जो है वही उसका ढांचा बनाता है। तो अगर आप उस किसी चीज का ढांचा बदल दीजिएगा तो उसकी क्षमताएं चेंज हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर ओमिक्रॉन को आप देखेंगे तो बेसिकली वो अभी एक नया वेरिएंट आया है। इसमें लोग बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा चेंज है कोविड के मुकाबले, जो पहला जो कोविड था सार्स कोविड 2, उससे काफी ज्यादा चेंज है। तो इससे कुछ दो तीन चीजें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। वेरिएंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है, पहली चीज अगर ये कितना इन्फेक्शियस है ये, ठीक है, मतलब कि R0 जो हम बोलते हैं, एक इंसान से कितने लोगों में ये फैल सकता है, इसकी कितनी क्षमता है, तो कितना इन्फेक्शियस है। अभी डर यह है कि लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस जो होता है वो जैसे मीजल्स होता है, तो मीजल्स आउटब्रेक जो है जल्दी जल्दी फैल जाता है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन के बारे में एक डर जो है वो है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। साउथ अफ्रीका में 10 दिन में कुछ 300 या 400 केसेस से 10 दिन के अंदर वो 10,000 पे पहुंच गए हैं। 10,000 भारत में छोटा नंबर लगता है, पर साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन के हिसाब से काफी बड़ा नंबर है। तो एक तो यह है कि ये एक इंसान से बहुत ज्यादा फैल रहा है। डेल्टा में भी इन्फेक्शियसनेस बहुत ज्यादा थी, पर लोग बोल रहे हैं कि या तो डेल्टा जितना या डेल्टा से थोड़ा ज्यादा भी इन्फेक्शियस हो सकता है, ये हमें पूरा पता नहीं है कितना है। तो पहला तो ये कि कितना इन्फेक्शियस है, ये थोड़े दिनों में पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, पर ये अभी आई थिंक पीपल आर थिंकिंग कि दिस इज वेरी इन्फेक्शियस। नाउ इट कैन बी इन्फेक्शियस, दैट इज नॉट अ, मतलब एक पहला चीज हो गया। दूसरा पैरामीटर ये है कि इन्फेक्शियस होने के साथ साथ क्या ये सिवियर डिजीज करता है या नहीं करता है। अगर ये इन्फेक्शियस है बहुत ज्यादा और ये सिवियर डिजीज नहीं करता है, ये मान लीजिए फ्लू जो होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है, वो बहुत ज्यादा सिवियर डिजीज नहीं करता है, ठीक है, किसी किसी साल ज्यादा सिवियर डिजीज करता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा सिवियर डिजीज नहीं कर सकता है तो इट कैन बी अ गुड थिंग कि सबको हो जाए, फैल वैल जाए और सबको सबके पास इम्यूनिटी आ जाए और लोग ज्यादा बीमार भी ना हो। पर ये हमको अभी पता नहीं है कि ये इन्फेक्शियस मतलब कितना ज्यादा सिवियर डिजीज करता है या नहीं करता है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट येट। यूरोप से एक पेपर आया है 70 पेशेंट्स का, जिसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा सिवियर डिजीज कर नहीं रहा है, बट उसमें बहुत ज्यादा वी शुडंट रीड टू मच इनटू इट, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। तो आई थिंक वी विल वेट एंड वॉच। तो पहला है इन्फेक्शियसनेस, दूसरा है सिवियर डिजीज, और तीसरा इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है री इन्फेक्शन, ठीक है। कोविड वायरस तो बहुत होते हैं और वायरस ह्यूमैनिटी को बहुत सारे अफेक्ट कर रहे हैं, पर वाई वॉज कोविड अ बिग प्रॉब्लम? कोविड इतना बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि वो नया वायरस था, नॉवल वायरस था। तो जो भी किसी को होगा वो पहली बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो जब किसी को पहली बार किसी चीज से इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्ट्रांग हो सकता है या हो सकता है बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाए। कंपेयर टू कि अगर कोई इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है तो एक डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, कोई पहली बार हो रहा है तो एक डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। तो तीसरा चीज है कि इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया में सेरो प्रेवलेंस या लोगों में जो इम्यूनिटी है कोविड के खिलाफ, वो जो सेकेंड वेव है उसके बाद बहुत ज्यादा हो गई है, 70% 80%, कई कोई सीरो सर्वे 90% भी बोलते हैं। मतलब इतने ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं कोविड से, कोविड के खिलाफ एंटीबॉडीज है। तो जो साउथ अफ्रीका से जो स्टडी आई है उसमें ये डर है कि इससे री इन्फेक्शन का भी डर है, ये पुराने हुए इन्फेक्टेड लोगों को एस्केप करके वापस से इन्फेक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो इंडिया के लिए एक पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस वाली बात हो जाती है, और री इन्फेक्शन हो रहा है तो कितना सिवियर हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। चौथी चीज है कि जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसमें ये कैसा बिहेव कर रहा है, mRNA वैक्सीन्स के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, या जो हमारा इंग्लैंड का जो वैक्सीन है AstraZeneca वैक्सीन, उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, या कोवैक्सीन के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें कितना प्रोटेक्शन, उन लोगों को कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो जब ये हमें, जैसे ही इन चारों सवालों का जवाब मिलेगा उसके बाद आई थिंक एक क्लियरर पिक्चर आएगी। तो पहला कि कितना कितना फैल रहा है या कितना इन्फेक्शियस है, ये तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। दूसरा कि सीवियर डिजीज कर रहा है या नहीं, ये भी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। और जो इम्यूनिटी वाला सवाल है वो होपफुली लैबोरेटरी में लोग टेस्ट ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा या पुराने सीरम के साथ मैच करवा के, तो उससे हमें वो भी पता चल जाएगा। तो जैसे ही इन चारों सवालों का जवाब पता चलेगा उसके बाद आई थिंक कि हमें एक बेटर सेंस मिलेगा कि ओमाइक्रॉन कितना बड़ा खतरा है, कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितना प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये सब आई थिंक उसके बाद ही पता चलेगा। बट उसके पहले अभी जो हड़कंप मची हुई, आई थिंक सम ऑफ इट इज गुड, सम ऑफ इट इज हार्मफुल, इट इज बोथ वेज।
तो ये बताइएगा कि फर्स्ट और सेकंड वेव में जो सबसे ज्यादा जिन पर प्रभाव पड़ा कोविड का, हार्मफुल प्रभाव पड़ा, नुकसानदायक रहा, वो कौन लोग थे और क्यों, इसके बारे में कुछ अभी भी समझ है क्या कि क्यों कुछ हम,
हाँ ये तो है,
यंग लोग भी मर गए, बूढ़े बुजुर्ग तो मरे ही मरे हैं लेकिन बहुत यंग लोग भी गुजर गए हैं 30-40 साल की उम्र के, इसमें क्या फैक्टर?
नहीं देखिए, हाँ आई थिंक स्टैटिस्टिक्स वाइज आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड वेव थोड़ा अलग था, अब थोड़ा अलग होगा। स्टैटिस्टिक्स वाइज अगर आप देखें, एज अभी भी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हायर द एज मोर द सीवियरिटी ऑफ कोविड, दैट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। उसके अलावा अभी जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो फर्स्ट और सेकेंड वेव में आप उतनी बात नहीं कर सकते थे, अनवैक्सीनेटेड वर्सेज वैक्सीनेटेड, नाउ आई थिंक पीपल हु आर अनवैक्सीनेटेड आर एट अ हायर रिस्क। जैसे यूएस में जो यहाँ की जो फोर्थ वेव बोलते हैं यूएस की, वो दैट इज अ एपिडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड, दैट इज बेसिकली एन एपिडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड, जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उनको ज्यादा हो रहा है। मैं भी हॉस्पिटल में जब देखता हूँ यहाँ पे मरीज, जितने भी लोगों को सीवियर हो रहा है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनवैक्सीनेटेड, 90% से ज्यादा लोग अनवैक्सीनेटेड, यहाँ का डेटा भी यही बोलता है कि जो अनवैक्सीनेटेड एरियाज हैं वो, तो ये पहला हो गया, वो दूसरा हो गया, एज इज द बिगेस्ट फैक्टर, अनवैक्सीनेटेड इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर और प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर नाउ। उसके बाद जिन लोगों को पुरानी कोई बीमारी है, खासकर लंग डिजीज है, तो फेफड़े की कोई भी बीमारी है, अगर पहले टीबी के कारण अगर लंग डैमेज हुआ है, या अस्थमा है, या सिगरेट्स के कारण COPD हो गया है, तो ये जो लोग इनहेलर यूज करते हैं, अगर आम जनता की भाषा में पीपल हु यूज इनहेलर्स आर एट अ हायर रिस्क, लंग डिजीज इज प्रोबेबली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। उसके बाद ओबिसिटी, अगर आपका ओबिसिटी है, मोटापा है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो इन लोगों में ज्यादा सीवियर है। अब ये है कि यंग डेथ्स हो रही हैं, तो अगर इन्फेक्शन का लोड इतना ज्यादा होगा तो ऐसा नहीं है कि यंग पीपल आर 100% प्रोटेक्टेड, बट दे आर मोर प्रोटेक्टेड देन एल्डरली पीपल। पर 100% प्रोटेक्टेड तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी नहीं है, तो 100% तो कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है, बट दे आर मोर प्रोटेक्टेड देन एल्डरली पॉपुलेशन। तो ये तो आप बायोलॉजी के हिसाब से मैंने समझा दिया, एज, वैक्सीन, बीमारी, जिनको फेफड़े की बीमारी है, दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, सबसे इंपॉर्टेंटली फेफड़े की बीमारी, ठीक है, या मोटापा, ये तो मैंने आपको बीमारी के हिसाब से समझा दिया, ये एक तरीका है। बट आई थिंक देर इज अनदर वे टू लुक एट इट, इज कि एक्सेस टू हॉस्पिटल किसके पास ज्यादा है। देर इज, आप इसको सोशली भी देख सकते हैं, तो जो लोग, जिनके पास एक्सेस टू हॉस्पिटल नहीं है, किसी भी तरीके का मार्जिनलाइजेशन हो सकता है, ज्योग्राफिक मार्जिनलाइजेशन हो सकता है, अगर आप गांव में रहते हैं या छोटे कस्बे में रहते हैं तो आपके यहाँ अच्छा अस्पताल नहीं है तो भी आपके आपका मरने का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपके यहाँ ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचा है, आपका आपके यहाँ डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, अस्पताल की कमी है, अस्पताल जल्दी भर जा रहे हैं तो भी आपका मरने का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आप गरीब हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो भी आपका ऑटोमेटिकली मरने का रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसा ऐसा इंडिया में मेरे को नहीं लगता है कि लोगों ने स्टडी किया है। यूएस में जो ब्लैक पॉपुलेशन है उनका मोर्टेलिटी रेट या हिस्पैनिक लोगों का मोर्टेलिटी रेट इज मच हायर देन व्हाइट पीपल इन द यूएस, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट जस्ट बिकॉज की वो लोग मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है। तो अगर आप ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, किसी भी तरीके से आप मार्जिनलाइज्ड हैं तो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम में आपका मोर्टेलिटी का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं।
अभी आपकी समझ में क्या लेटेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, हमारी जो अभी तक जो अनुभव है ग्लोबल उसमें क्या काम करता है क्या नहीं करता है?
तो कोविड के ट्रीटमेंट में दो तरह का है, या तो आपको ऑक्सीजन लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर आपको ऑक्सीजन नहीं लग रहा है पर आपका कोविड पकड़ा जाता है, और अगर तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक अच्छा ट्रीटमेंट है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखना पड़ेगा कि ये ओमाइक्रोन के खिलाफ काम कर रही है या नहीं, बट डेल्टा के लिए अच्छा काम कर रही है, जो डेल्टा वेरियंट है उसके लिए अच्छा काम कर रही है। तो रेजेनरॉन की एंटीबॉडी है या एली लिली की एंटीबॉडी है, बेमलिनिविमैब या रेजेनरॉन का कैसीरिविमैब, तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अच्छा काम करती है। तो जब तक किसी को ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, जब तक किसी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब नहीं हुआ है, टिल देन यू कैन गिव दीज एंटीबॉडी कॉकटेल्स, तो दे वर्क वेरी वेल, दे प्रिवेंट फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, अगर आपको ऑक्सीजन मिलने लगा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, अगर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो स्टेरॉइड्स होता है, डेक्सामिथासोन 6 मिलीग्राम, लोग बहुत तरह तरह की डोज दे रहे हैं इसमें, पर डेक्सामिथासोन 6 मिलीग्राम सबसे स्टैंडर्ड डोज है, वो 10 दिन के लिए दी जाती है। दूसरा इलाज जो है डेक्सामिथासोन के अलावा, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इलाज है वो है ब्लड थिनर्स, खून पतला करने की दवाई। तो इनोक्सापेरिन का इंजेक्शन आता है या कुछ कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, तो वो लेना चाहिए 10-12 दिन तक या 14 दिन तक। स्टीरॉइड्स हो गया, खून पतला करने की दवाई हो गई। उसके अलावा तीसरी जो दवा है, अगर कोई थोड़ा ज्यादा बीमार हो जाता है, किसी को ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है या किसी का CRP नामक एक टेस्ट है, उसकी जो वैल्यू है वो 75 या कुछ लैब्स में 750, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी लैब में जा रहे हैं उनका उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 75 या 750 से ज्यादा हो गई है। इंडिया में 750 भी होता है या 75 दोनों होता है, तो डिपेंडिंग की आपका वहाँ का स्टैंडर्ड रेंज क्या है। तो अगर 75 से ज्यादा हो गया है तो आप टोसिलीजुमैब दे सकते हैं या बैरिसिटिनिब दे सकते हैं। तो स्टीरॉइड्स, खून पतला करने की दवाई और टोसिलीजुमैब। स्टीरॉइड से शरीर में सूजन कम होती है, खून पतला करने की दवाई क्योंकि कोविड में ब्लड क्लॉट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और तीसरा जो है टोसिलिजुमैब या बैरिसिटिनिब, इससे भी सूजन कम होती है। ये तीन दवाई, टोसिलिजुमैब अगर जरूरत नहीं है तो नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका अपना नुकसान है। स्टीरॉइड अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं लग रहा है तो नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका अपना नुकसान है। ठीक है, तो यही तीन दवाइयां मेन है। उसके अलावा बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल, और खांसी है तो खांसी की दवा। उसके अलावा और कोई खास दवाई है नहीं कोविड में अभी तक।
रेमडेसिविर के बारे में क्या ख्याल है आपका?
तो रेमडेसिविर जो है, शुरुआत में लोगों ने यूएस में से एक स्टडी आई थी, उसमें पहले ये बोला था कि इसमें हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, 15 दिन के बजाय 11 दिन हो रहा है। ठीक है, पर फिर WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी और देखा कि इससे कोई मोर्टैलिटी बेनिफिट नहीं है। मोर्टैलिटी बेनिफिट का मतलब है कि लोगों का डेथ कम नहीं हो रहा है इससे। जो इंडिया में जो स्टडी हुई थी उसमें लोग जल्दी घर भी नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो कोई खास अंतर था नहीं। तो रेमडेसिविर आपका, इट इज वेरी एक्सपेंसिव विदाउट एनी बेनिफिट। मिनिमल बेनिफिट होता तो भी हम बात कर सकते थे, बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट देयर इज नो एक्चुअल बेनिफिट ऑफ गिविंग रेमडेसिविर।
अभी जो निकला ये मोलुनवीर करके, जो मर्क का है, बहुत हल्ला हो रहा है उसके बारे में, लोग एडवांस में खरीद रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव है।
मोलनुपिरावीर जो है, वो पहली चीज तो आई थिंक उसका अभी बहुत अच्छा डेटा आएगा। वो खुद ही अपना डेटा चेंज कर रहे हैं वो, तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि उसका पीयर रिव्यूड जर्नल में जब डेटा आता है हम देखते हैं, उसके बाद ही इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। फाइजर का भी एक कैंडिडेट है, मर्क का भी एक कैंडिडेट है, बट विल सी पीयर रिव्यूड जर्नल में आए, उसके डेटा को एनालाइज करें, किस पेशेंट में बेनिफिट होगा, कौन से दिन तक बेनिफिट होता है, कितना फायदा है, ये सब देखने के बाद, क्या कॉस्ट है, ये सब देखने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए।
इंडिया के संदर्भ में आप क्या बोलेंगे कि हम जिस तरह से इस पैंडेमिक के साथ डील किए हैं पिछले 2 साल में, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए? हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आप संक्षिप्त में कुछ बता सकें कि हम इसको और बेहतर तरीके से कैसे डील कर सकते थे और क्यों नहीं कर पाए।
आई थिंक इंडिया के संदर्भ में कुछ चीजें हैं। आई थिंक कि अगर आप 2020 मार्च में देखें तो ऐसा नहीं, सरकार काफी प्रोएक्टिव थी, एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए थे इम्पोर्टेंट मेडिसिन के, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे, फॉर वॉट एवर रीजन लॉकडाउन भी किया था, तो एटलीस्ट कुछ एक्शन भी लिया था। मतलब लॉकडाउन की अपनी प्रॉब्लम्स थी, पुअरली इम्प्लीमेंटेड था, गरीब जनता को बहुत परेशानी हुई, तो लॉकडाउन की अपनी परेशानियां थी और बहुत ज्यादा परेशानियां थी, पर एटलीस्ट एक कोशिश थी। मेरे को लगता है कि अगर आप सिर्फ कोविड की बात करें, आप सोशल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करें, आप अदर एस्पेक्ट्स की बात ना करें, तो आई थिंक अगस्त सितंबर तक हमने एक अगस्त सितंबर 2020 तक एक अच्छा काम किया था। केस मैक्सिमम हमारे 90,000-95,000 डिटेक्टेड थे, उससे ज्यादा कभी हुआ नहीं, हॉस्पिटल्स फुल थे पर बहुत खराब हालत नहीं थी, डेथ्स हुई पर मतलब कंसीडरिंग द हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया एक एक्सेप्टेबल हालत थी इंडिया की। आई थिंक वी लॉस्ट द प्लॉट समटाइम इन डिसम्बर 2020, जब ये पता था कि डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, जब इंडिया की अपनी ही रिसर्च थी जो बोल रही है कि सिर्फ 20% लोग ही इम्यून है, यानी कि 80% पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टिबल है, तब आई थिंक उसके बाद चाहे वो इलेक्शनियरिंग हो या फिर पब्लिक की अपनी ढील हो या मैसेजिंग जो थी पॉलिटिकल क्लास की या फिर जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसको उसने भी लाइटली लिया, और हमने वो टाइम यूज नहीं किया अपने अस्पतालों को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए. आई थिंक ये सारी चीजें जो जो हमने नहीं की, उसके कारण जो सेकेंड वेव आया दैट वॉज अनपार्डनेबल. मतलब ये ऐसा कहीं भी, क्योंकि आप अगर 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 फर्स्ट वेव वॉज एज बैड एज द सेकेंड वेव, तो आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये हिस्टोरिकली इंडिया का हेल्थ सिस्टम वीक है, हिस्टोरिकली अंडरफंडेड है, हमें पता नहीं था, यू नो, मतलब इट इज इट देयर कैन बी अ डिस्कशन. बट एक साल के बाद आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा चुके हैं, आपको साइंस पता है, आपको दवाइयां पता है, आपको साल भर मिला है कैपेसिटी बढ़ाने का, रिसर्च करने का. उसके बाद जब ऐसा होता है तो आई थिंक कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो साइंस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हेल्थ सिस्टम्स के जो लीडर्स हैं, स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, सबकी, एवरीवन इज इक्वली एट फॉल्ट व्हेन इट कम्स. आई थिंक पब्लिक को दोष देना गलत होगा. पब्लिक का बिहेवियर उसी तरीके से बनता है जिस तरीके की साइंटिफिक क्लास या पॉलिटिकल क्लास की मैसेजिंग होती है. तो ये आई थिंक कि वो अनपार्डनेबल था. इतनी डेथ्स कभी भी नहीं होनी चाहिए थी, इतना ज्यादा कभी भी वो, इट शुड नॉट हैव स्प्रेड दिस मच. सो आई थिंक, सो व्हाट दिस शोज इज कि एक तो कि हम लोगों का हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा क्रोनिकली अंडरफंडेड है, एक बहुत ही हाईली प्राइवेटाइज्ड हेल्थ सिस्टम है, उसकी अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. रूरल एरियाज में हेल्थ केयर की हालत बहुत खराब थी, जिसके कारण आपके लोग शहर आ रहे थे, शहरों के अस्पताल भर गए. तो आई थिंक कि हेल्थ सिस्टम खराब था, आपका पॉलिटिकल क्लास बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल था, आपके साइंटिस्ट्स वर टेकन मतलब कॉट ऑफ गार्ड. तो आई थिंक इट शोज कि एक अंडरफंडेड हेल्थ सिस्टम्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. गोइंग फॉरवर्ड, मेरे को नहीं लगता है कि कुछ बदला है कुछ खास. डेल्टा वेरिएंट के बाद, इतनी सारी डेथ्स के बाद, द बेस्ट दे केम अप विद डिजिटल हेल्थ मिशन. मतलब डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल डिजिटल से आपकी परेशानियां सॉल्व नहीं होने वाली हैं. डिजिटल का फायदा तब होता है जब आपके पास एक हेल्थ सिस्टम हो तो आप उसका डेटा यूज करेंगे. अभी तो आपका डेटा ही नहीं जनरेट हो रहा है, तो आप डिजिटल का करेंगे क्या? मरीज है, कंप्यूटर नहीं जो आप उसमें डिजिटल जोड़ रहे हैं. तो ये एक बहुत ही, मतलब दिस शोज की जो इंडिया का जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, जो पॉलिटिकल लोगों के जो एडवाइजर्स हैं, वो हाउ बैंक्रप्ट दे देमसेल्व्स आर. मतलब जो भी डिजिटल हेल्थ मिशन का आर्किटेक्ट है, आई डाउट देयर क्रेडिबिलिटी एज अ ट्रेंड पब्लिक हेल्थ पर्सन. एंड इट शोज की, मतलब कि वी आर सेट अप अगेन फॉर अ डेल्टा लाइक वेव. If something happens, if there is a new pandemic, something again will happen. Because the answer to something like this should be what Rwanda did after Ebola. Rwanda mein Ebola hua, deaths hua. Rwanda choti country hai, aap ye sab bol sakte ho. But unka answer jo tha, wo hona chahiye hamara answer. Unhone apne health system ko strengthen kiya hai. To haan, matlab, I think it would be digital health mission hai. This shows you people are not serious or people are incompetent at the top.
एक तरह से भारतीय संदर्भ में एक जो साफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में जो भी काम करता है, थोड़ा सा सेंसिटिव हो तो बहुत आसानी से समझ में आता है कि जो देश को चला रहे हैं उनको जनता के स्वास्थ्य की परवाह है ही नहीं. एक तो प्राइवेटाइजेशन की बात की, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि दाम बहुत बढ़ा. कोविड के दौर में मालूम नहीं कितने लाखों रुपए एक एक मरीज को देना पड़ा. बहुत सारे लोग कर्जे में चले गए, कर्जे के कारण परिवारों ने खुदकुशी की, वो सब एक तरफ. दूसरा ये कि ये एक ऐसा एक राज चला रहे हैं जिसमें बस चंद लोगों के लिए ये राज चल रहा है. आम जनता के बारे में तो कोई सोच, जैसे ऑक्सीजन का मामला है, कोविड के आने से पहले भी ऑक्सीजन की जरूरत, तमाम तरह की बीमारियों में जरूरत होती है, मेरी समझ में टीबी है।
गोरखपुर में 63
मर गए थे तो ये ऑक्सीजन की जरूरत जो आम जनता को थी पहले से उसके लिए तो किसी ने इंतजाम नहीं किया इतने सालों में, तो अचानक कोविड के आने पे थोड़ा कर पाएंगे। मतलब इनकी लंबी परंपरा है, मतलब एक अनदेखी करने की बहुत लंबी परंपरा है ये। आप सही कह रहे हैं कि राजनीति से जुड़ा हुआ है और जिस तरह के लोग राजनीति में हैं और जिस तरह का एक सामाजिक ढांचा बन गया हमारे देश में, उसमें डॉक्टरों का क्या कर्तव्य बनता है? ऐसी
देखिए, हाँ नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो डॉक्टरों का क्या कर्तव्य बनता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जो जो इंडिया में जो डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है या दुनिया भर में कहीं भी जो डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है वो एक बहुत ही साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसमें आप एक डॉक्टर हो, आपको ये साइंस आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये बीमारी ऐसी होती है, इसका ये दवाई होता है, इतना सिखाया जाता है। डॉक्टर और किसी और, या मेरे को किसी और प्रोफेशन से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक डॉक्टर की ट्रेनिंग यहीं आके रुक जाती है। डॉक्टर की इंडिया में अपनी कोई जिसको मैं बोलूंगा कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी, उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी एक टेक्नीशियन जैसी बन जाती है। डॉक्टर्स अपनी स्किल, अपनी टेक्निक, अपने अपनी नॉलेज इसी में घूम के रह जाते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे को आई शुड नो द बेस्ट ऑपरेशन अगर मैं सर्जन हूँ, आई शुड बी एबल टू डू वेरी गुड सर्जरी अगर मैं सर्जन हूँ, आई शुड बी एबल टू डायग्नोस द मोस्ट डिफिकल्ट डिजीजेस इफ आई एम अ क्लिनिशियन, अगर मैं फिजिशियन हूँ तो मेरे को सबसे मुश्किल बीमारी को डायग्नोस करते आना चाहिए। तो आई थिंक डॉक्टर का जो काम है वो एक बहुत ही टेक्निकल लेवल का काम होके रह गया है, और डॉक्टर खुद को अपने आप को जो जज करते हैं वो अपनी टेक्निकल स्किल्स पे जज करते हैं, अपने पीयर्स को जो असेस करते हैं वो अपनी उनकी टेक्निकल स्किल्स पे असेस करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अंडर प्लेइंग देम। पर यहीं पे आके अगर कोई इससे थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो वो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करता है, मरीज से कितनी सहानुभूति से वो बात कर रहे हैं, मरीज से कितना प्यार से बात कर रहे हैं, मरीज के साथ एम्पथाइज कितना कर रहे हैं, आई थिंक मरीज को कितना कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, दूसरे लेवल पे इस पे आके रुक जाते हैं। पर इसके आगे, और ये भी जो है दैट इज एन एस्पिरेशन, दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग, कि टू बी एन एम्पथेटिक कंपैशनेट फिजिशियन इज एन एस्पिरेशन, इट इज नॉट अ कॉमन प्लेस थिंग। कॉमन प्लेस थिंग इज कि आपका टेक्निकल स्किल अच्छा होना चाहिए, वो भी क्वेश्चनेबल है, पर उस पे आके रुक जाते हैं। तो जब आपका जो डॉक्टर है वो अगर यहीं तक सीमित है तो वो यहीं तक काम करता है, उसके बाद वो ये नहीं सोचता है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ या मैं सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हूँ या मैं किसी गांव में काम कर रहा हूँ या किसी शहर में काम कर रहा हूँ, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा मरीज कंगाल हो रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मरीज की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जो पब्लिक हेल्थ का जो ढांचा है वो कैसा है, वो ये सब काम किसी और पे छोड़ चुके हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर मेरे मरीज को परेशानी हो रही है इस ढांचे की वजह से तो हम इसके बारे में कुछ लेख लिखें या कुछ बात करें। डॉक्टर्स की आप स्ट्राइक बहुत देखेंगे जब उनके ऊपर वायलेंस होता है, विच इज वेरी जस्टिफाइड। डॉक्टर्स की आप स्ट्राइक देखेंगे जब उनको अपनी सैलरी बढ़वानी होती है, विच इज वेरी जस्टिफाइड। डॉक्टर्स की आप कभी स्ट्राइक नहीं देखेंगे कि मरीज को दवाई नहीं मिली और दवाई नहीं मिलने के कारण उसकी डेथ हो गई। मरीज की आप कभी स्ट्राइक नहीं देखेंगे कि मरीज बैंकरप्ट हो गया और उसके कारण वो आत्महत्या कर रहा है। डॉक्टर की आप कभी स्ट्राइक नहीं देखेंगे जब प्राइवेट हॉस्पिटल उनके साथ गलत करता है। डॉक्टर्स की आप कभी डॉक्टर्स को मरीज के लिए बोलते हुए नहीं देखेंगे, एंड दैट इज अ ट्रेजेडी एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ कि हाउ द प्रोफेशनल आइडेंटिटी शेप द प्रोफेशनल आइडेंटिटी शेप ऑन देयर टेक्निकल स्किल्स एट मोस्ट एन एस्पिरेशनल टू बी एम्पथेटिक कंपैशनेट फिजिशियन. आप एक एजेंट ऑफ सोशल चेंज बनेंगे, ये डॉक्टर के प्रोफेशनल आइडेंटिटी के यूजुअली बाहर होता है. 99% ऑफ द डॉक्टर्स और इवन 99.9% ऑफ द डॉक्टर्स किसी एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एनी काइंड ऑफ सोशल चेंज एनी काइंड ऑफ इन चीजों से बाहर रहना चाहते हैं. इनफैक्ट जो मेडिसिन का जो कोर होता है वो है होता है पैथोलॉजी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैथोलॉजी बिकॉज दैट इज हाउ यू डायग्नोस. फादर ऑफ पैथोलॉजी थे रूडोल्फ वर्चाउ. फादर ऑफ पैथोलॉजी थे रूडोल्फ वर्चाउ. उन्होंने कहा था कि मेडिसिन हेल्थ इज नथिंग बट पॉलिटिक्स एट अ लार्ज स्केल. बट उन्होंने हम पैथोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वर्चाउ की ही पैथोलॉजी पढ़ते हैं, पर हम वर्चाउ का जो सोशल साइंस वाला एस्पेक्ट था वो हम नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल. तो डॉक्टर की जो भूमिका है उसकी उसमें प्रॉब्लम है. मतलब आप डॉक्टर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं.